नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शिवेंद्र चतुर्वेदी। शिवेंद्र, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत।
थैंक यू अतहर, सुनने वालों को भी नमस्कार।
आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का रंगारंग समारोह के साथ समापन। महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा जबकि हरियाणा दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स यू में 19 से 24 मई तक। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला मालदीव से, और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त। सबसे पहले बात खेलो इंडिया यूथ गेम्स की।
इंडिया इंडिया खेलो इंडिया, खेल के रंग बिहार के संग, खेलो इंडिया।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज संपन्न हो गए। बिहार के पटना में कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रंगारंग समारोह के साथ यूथ गेम्स का समापन हुआ। बारह दिनों तक चले खेलों के इस महाकुंभ में देश भर से करीब 5,300 खिलाड़ियों के साथ 3,000 कोच और अधिकारियों ने भाग लिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 मई से शुरू हुए थे। समापन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में खेल की नई संस्कृति का विकास किया जा रहा है। महाराष्ट्र 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य पदक जीतकर कुल 158 पदक के साथ ओवरऑल चैंपियन रहा। महाराष्ट्र ने 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सफलता दोहराई है। हरियाणा 39 स्वर्ण, 27 रजत और 51 कांस्य पदक सहित कुल 117 पदक जीतकर बड़ा उलटफेर करते हुए दूसरे स्थान पर रहा। वहीं राजस्थान 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य पदक सहित कुल 60 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र राज्य दल के प्रमुख महादेव कासगावड़े ने महाराष्ट्र के प्रदर्शन पर कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसमें राज्य सरकार का पूरा सहयोग रहा, जो सुविधाएं दी गई उससे हमारे दल का प्रदर्शन शानदार रहा।
बहुत ही अच्छा कंपटीशन डिजाइन किया है, इसके लिए मैं साई को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म इंडिया में बनाया है। वो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये बहुत ही बढ़िया है। अभी कोई स्टेट्स में कैश प्राइज दे रहे हैं, जैसे ऐसे बच्चों का और एक स्पोर्ट्स में भी करियर करने की संधि प्राप्त हो गई है, और ये खेलो इंडिया गेम्स ऐसे ही दिन ब दिन बढ़ते जाए यही हमारी इच्छा है। इन्होंने जो यहाँ की सुविधा की और जो गेम्स ऑर्गेनाइज किए बहुत ही बढ़िया।
इस बीच मेजबान राज्य बिहार ने अपने पदकों की संख्या को एकल अंकों से बढ़ाकर इस वर्ष 36 तक पहुंचाकर अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने कहा कि राज्य ने विशेष रूप से एथलेटिक्स में उल्लेखनीय प्रगति की है।
एथलेटिक्स में हम इतना अच्छे से कर पाए हैं उसका कारण 3.5 साल पहले हमने जो निर्जैम ऑर्गेनाइज किया उसमें जो एथलीट्स सिलेक्शन हुए और उसके बाद जो हम लोगों ने उनको ज्ञान दिए, नर्चर किए, 4 साल के बाद हम एथलेटिक्स में वो भी स्प्रिंट में, ट्रैक इवेंट्स में, रिले में मेडल मार रहे हैं।
आज अंतिम दिन खेले गए बास्केटबॉल, तलवारबाजी और भारोत्तोलन की स्पर्धाओं में मिला जुला परिणाम रहा। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं अपने संवाददाता की ये रिपोर्ट।
आज बास्केटबॉल के बालक वर्ग के फाइनल में उत्तर प्रदेश ने राजस्थान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं बालिकाओं के मुकाबले में कर्नाटक ने हरियाणा को पराजित कर सोने का तमगा अपने नाम किया। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स तलवारबाजी में हरियाणा के बेहतरीन प्रदर्शन का भी गवाह बना। आज खेले गए तीनों फाइनल के मुकाबलों में स्वर्ण पदक हरियाणा के नाम रहे। पूरे आयोजन में तलवारबाजी की सभी स्पर्धाओं में हरियाणा ने 7 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते और इस स्पर्धा में अपनी श्रेष्ठता साबित की। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार कई कीर्तिमान का गवाह रहा। भारोत्तोलन में कई रिकॉर्ड टूटे तो कई नए रिकॉर्ड बने। 400 मीटर की दौड़ में उत्तर प्रदेश के कादर खान और 100 मीटर के फर्राटा में महाराष्ट्र के आदित्य पिछाले ने खेलो इंडिया का सबसे तेज धावक बनने का नया कीर्तिमान बनाया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
शिवेंद्र, अपनी चर्चा का आगाज करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात के साथ। तो आज संपन्न हो गया ये खेलों का महाकुंभ, जहां तक युवा प्रतिभाओं का सवाल है, तो क्या ये अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पहुंचा?
जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। देखिए, इसमें अथर मल्टीपल चीज़ें हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, और अब हम खेलो इंडिया बीच गेम्स भी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं 19 से 24 तक। तो बेसिकली ये एक खेल आंदोलन का शक्ल अख्तियार कर चुका है, और भारत सरकार की ये जो पहल है प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए, इसमें दो तीन चीजें, जैसे मैं कहता हूं, एक तो अभी हमने जिक्र सुना कि पटना में क्लोजिंग सेरेमनी हुई, लेकिन बिहार में 5 जगहों पर ये खेल हुए, जिसमें पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय, इन सभी जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में इजाफा हुआ। ऐसा तो नहीं है कि वहां पर कोई पुराने स्टेडियम रहे होंगे या फिर वहां पर सुविधाएं नहीं होंगी, फिर भी गेम करवा दिए गए। तो इसका एक जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है वो तो ये है कि नए खिलाड़ी उभर के सामने आते हैं, और दूसरी बात इंफ्रा में बढ़ावा होता है। एक और जो बेस्ट पार्ट इसका मुझे लगता है, कई सारे बेस्ट पार्ट हैं, तो कौन सा सबसे बेस्ट है ये कह पाना मुश्किल है, वो है स्कॉलरशिप। 5 साल तक, अगर आपको 8 साल तक, 1 साल में 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप है, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते जाते हैं तो आपको 8 साल तक 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी आपको 40 लाख रुपए का फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल सकता है, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। तो ये फैसिलिटी अगर यंग टैलेंट को मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, स्टेडियम्स मिलते हैं, कोचेस मिलते हैं, और सबसे बढ़ के कंपटीशन मिलता है।
बिल्कुल सही कहा
तो
आपने।
उससे बढ़कर क्या बात हो सकती है?
हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि भारत में खेल संस्कृति का और विकास हो, इस बार के यूथ गेम्स अपने लक्ष्य को कितनी सफलता के साथ पहुंचे?
ये मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने वो कई बार जैसा उन्होंने कहा है कि जो खेलेगा वो खेलेगा।
जी जी,
और ये बिल्कुल सही बात है। ये जो खेलो इंडिया आंदोलन है, ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक छोटा सा दृष्टांत इसका मैं आपको देना चाहूंगा। कल से डायमंड लीग एथलेटिक्स की शुरुआत हो रही है, नीरज चोपड़ा वहां जा रहे हैं, सारी दुनिया जानती है, 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, लेकिन उनके साथ भारत की ओर से 3 और एथलीट भी जा रहे हैं। एशियाई खेलों के सिल्वर मेडलिस्ट हैं किशोर जैना, वो जा रहे हैं, और 2 और एथलीट जा रहे हैं। तो डायमंड लीग की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया के 4 एथलीट जा रहे हो। यहां बिहार में ये गेम्स हुए, बिहार ने अपने मेडल्स की संख्या, आपने खुद बताया
जी,
रिपोर्ट में हमने पढ़ा कि उन्होंने 2.5 से आगे बढ़ाया। बिहार ने रग्बी में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, सेपक तकरा में 1 गोल्ड मेडल जीता, और जैसे शंकरन जी कह रहे थे एथलेटिक्स में उन्होंने 1 गोल्ड मेडल जीता, 5 सिल्वर मेडल जीते। तो सिर्फ कहने का मतलब यह है कि जहां पर इन खेलों का आयोजन होता है, लोकल स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है, सारे देश से खिलाड़ी पहुंचते हैं, देश की जो सांस्कृतिक जो एकता है और खेलों के माध्यम से एक जो बढ़ावा मिलता है, और कंपटीशन, वो सबसे बड़ी बात है।
और बड़ी बात यह है कि भारत में खेल संस्कृति का बहुत जोरदार विकास हो रहा है। शिवेंद्र, आगे बढ़ेंगे। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन दीव में 19 से 24 मई के बीच किया जाएगा, जिसमें 36 प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। पहली बार खेलो इंडिया की खेल प्रतिस्पर्धा और प्रतिभा विकास योजना के तहत इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। शिवेंद्र, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बाद सरकार की ये एक और बहुत अच्छी पहल है, क्या कहते हैं आप, कितना लाभ होगा भारतीय खिलाड़ियों को?
देखिए, ये बीच गेम्स जो है, इसमें 6 स्पोर्ट्स हैं और 2 डेमो स्पोर्ट्स हैं। जो 2 डेमो स्पोर्ट्स हैं उसमें एक है मलखंभ, जो कि हमारा पारंपरिक खेल है, और दूसरा है टग ऑफ वॉर, जैसे रस्साकशी कहते थे, और हम लोगों ने भी बचपन में उसको काफी खेला है। लेकिन जब ये बीच गेम्स में जाता है तो उसका जो आकर्षण होता है वो बिल्कुल अलग होता है। बीच वॉलीबॉल हम सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा बीच कबड्डी होगी वहां पर, बीच सॉकर होगा, सेपक तकरा होगा। तो ये जो बीच गेम्स का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, कंट्री से 1000 के आसपास प्लेयर्स आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये भी जैसे जैसे ये कारवां भी आगे बढ़ेगा तो हमें नई मंजिलें मिलेंगी।
खेलेंगे और खेलेंगे,
बिल्कुल, डेफिनेटली।
एक सवाल और है, सरकार का जो उद्देश्य है शिवेंद्र की खेलो इंडिया यूथ गेम्स से नई प्रतिभाओं को सामने लाया जाए, कितना ज्यादा लाभ, देखिए लाभ तो मिल रहा है, लेकिन कितना अधिक लाभ मिल रहा है राष्ट्रीय पटल पर और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर?
देखिए, कुछ दिन पहले सिफ्त कौर सामरा का नाम बहुत तेजी से आया था, जब अर्जेंटीना में और उसके बाद पेरू में शूटिंग के वर्ल्ड कप हुए थे, और वहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे। और ये सिफ्त कौर सामरा वही थी जिनसे मेरी पहली मुलाकात मुलाकात इन्हीं खेलो इंडिया गेम्स के दौरान हुई थी। तो ऐसे तमाम नाम हैं।
मनु भाकर
मैं आ ही रहा था, आपने जुबान से बिल्कुल नाम मेरा ले लिया। तो मनु भाकर ने भी जो शुरुआत की थी, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं अभी जिन्होंने, चाहे वो नेशनल गेम्स हो या खेलो इंडिया। एक और जो अच्छी बात हो रही है अथर, वो ये हो रही है कि पहले हमारे यहाँ गाहे बगाहे स्पोर्टिंग इवेंट्स के आयोजन की बातें सुनाई पड़ती थी, आज की तारीख में इट हैज बिकम अ रेगुलर फीचर, जो शायद बहुत जरूरी था प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सैफ अंडर 19 फुटबॉल की। अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में खेले जा रहे सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय अंडर 19 फुटबॉल टीम कल होने वाले सेमीफाइनल में मालदीव के खिलाफ जीत की लय को जारी रखने की कोशिश करेगी। नेपाल और बांग्लादेश भी कल पहले सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। शिवेंद्र, सैफ फुटबॉल में कल भारत का सामना मालदीव से है, तो क्या हम ये मुकाबला जीतकर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद लगाएं?
जी बिल्कुल, डेफिनेटली भारत ने नेपाल को 4-0 से हराया है। भारत के जो कप्तान है बिबियानो फर्नांडेज, उनके अलावा डैनी मैटेई हैं जो कि भारतीय टीम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रोहन सिंह, ओमांग डोडम जो फॉरवर्ड लाइन में है, ये बिल्कुल दे आर अ फोर्स टू रेकन विद। और मालदीव के हालांकि अहमद शाकिर हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन रेड स्नैपर्स कहा जाता है उनको। मालदीव भारत के सामने अंडर 19 टूर्नामेंट है, लेकिन फिलहाल मुझे ठहरता हुआ नहीं लग रहा है। और जो दूसरा सेमीफाइनल है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल, ये देखिए मालदीव ने कोई मैच नहीं जीता, दोनों ड्रॉ खेले, लेकिन वो सेमीफाइनल यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। नेपाल और बांग्लादेश में कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही टीमें लगभग बराबर की हैं और कोई भी जीत सकता है, भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं।
टक्कर बराबर की हो
जी।
और अब बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में उन्नति हुड्डा, मालविका बंसोड और आकर्षि कश्यप की हार के साथ भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। महिला सिंगल्स मुकाबलों में आज भारत की उन्नति हुड्डा, मालविका बंसोड और आकर्षि कश्यप दूसरे दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। उन्नति हुड्डा को थाईलैंड की पोन वापी चोचुवोंग ने 14-21, 11-21 से हराया। मालविका बंसोड को थाईलैंड की रत्चानोक इंतालून ने 12-21, 16-21 से हरा दिया, जबकि आकर्षि कश्यप थाईलैंड की सुपानीटा काटेथोंग से 9-21, 14-21 से हार कर बाहर हो गई। पुरुष सिंगल्स मुकाबले में भारत के थारून मन्नेपल्ली को डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने 14-21, 16-21 से पराजित किया। ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी को जापान की सायाका होबारा और रूई हिरोकामी की जोड़ी से 20-22, 14-21 से हार का सामना करना पड़ा। शिवेंद्र, थाईलैंड ओपन में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में आपकी टिप्पणी?
मेरी टिप्पणी सिर्फ इतनी है कि थोड़ा सा निराशाजनक है त्रिशा और गायत्री का हारना, वो थर्ड सीडेड थे, लेकिन बाकी जो भी खिलाड़ी हारे हैं वो बहुत ही अपने से ऊंची वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों से हारे हैं। और उन्नति हुडा जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और अभी जो लेटेस्ट रैंकिंग अथार आई है 13 मई को, दो दिन पहले, उसमें उन्नति हुडा 45वें नंबर पर पहुंच गई है। 8 पायदान का फायदा है,
महज 17 बरस की हैं।
जी बिल्कुल, और अनहद सिंह की याद दिलाती हैं जो स्क्वाश में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई थी। ये अलग बात है कि सेकेंड राउंड में हार गई वो, लेकिन उन्नति हुडा भविष्य की उम्मीद है। आकर्षि कश्यप 49 प्लेस पर है, लेकिन अनुपमा उपाध्याय पिछले सप्ताह टूर्नामेंट हुआ था वहां अच्छा खेली थी। मालविका बंसोड़ का आपने नाम लिया, वो 23वें पायदान पर हैं रैंकिंग में। तो अभी भी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारत के टॉप रैंक प्लेयर हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन का दौर है भारतीय बैडमिंटन में, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो खिलाड़ी जिनका हम नाम ले रहे हैं, ये जल्दी ही सिंगल्स में, महिला पुरुष वर्ग में और बेहतर रैंकिंग की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे।
अच्छा, बहुत ही संक्षिप्त, ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी हार कर बाहर होगी, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन समय का अभाव है। शिवेंद्र, आपको यहीं मैं रोकना चाहूंगा, और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। शिवेंद्र, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ आपने बहुत विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच।
और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।